I'm Annie Apple, and I'm here to invite you to come and listen to my new podcast series, Raising a Pro. It's the most intimate sports-related conversations you will hear. Each week, we explore the journeys of some of your favorite NFL players through the eyes of those that know them best. From Joe Burrow, DeAndre Hopkins, Myles Garrett, Ezekiel Elliott, Nick and Joey Bosa, just to name a few. With exclusive insights and information, we leave no stone unturned. Subscribe now to Raising a Pro on your favorite podcast app.
HD Smartcast. You are listening to an HD Smartcast original.
ये podcast एक HD Smartcast original है. HD Smartcast भारत का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ podcast producing platform है. किसी का आना जितनी खुशियां देती है, उसी का जल्द ही चले जाना उतना ही दुख भी. कई कल्पनाओं में बारिश को खूबसूरत और आनंद से जोड़कर कवियों ने, लेखकों ने बताया है. बारिश मतलब ही आनंद, सौहार्द, हरियाली. लेकिन एक और पहलू है, आषाढ़, सावन, फिर भादो. भादो वो महीना है जब सावन जाता है, हमसे विदा लेता है. विदा लेगा तभी तो अगले साल फिर से खुशियां लेके आएगा. लेकिन विदा लेने की इस कड़ी में ये जरूर बोलूंगी कि ये जो श्री कृष्ण और वृंदावन ने मन को इतना सरोबार रखा, कितना कुछ सोचा, कितना कुछ सुना, राधा जी का प्रेम, गोपियों की लीला, सावन का झूला, उतना ही प्रासंगिक है बांसुरी, जिसकी धुन के बिना तो ये तारतम्यता, ये माधुर्यता, ये कल्पना ही अपूर्ण है. बांसुरी की अपनी भी तो कुछ कहानी है जो शायद हमने बहुत ज्यादा नहीं सुनी. बांसुरी श्री कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु है. वे उन्हें हमेशा अपने पास रखते हैं. सुना है गोपियां भी ईर्ष्या करती थी बांसुरी से. मनमोहना के इतने करीब होने का अवसर जो मिल रखा है इसे. लेकिन क्या ईश्वर के करीब जा पाना इतना ही आसान है? ईर्ष्या स्वाभाविक है. वो सुनहरी बांसुरी, उसमें ऐसा है ही क्या कि ईश्वरीय हो गई, प्रभु की प्रिय हो गई? सोचती हूं तो लगता है जैसे जैसे किसी स्त्री के विषय की बात है, जहां ईश्वर के प्रिय होने में भी प्रश्न जुड़े हैं. समाज से प्रश्न, मित्र बंधुओं से प्रश्न, प्रश्न अनेक. लेकिन स्त्री रूपी बांसुरी चुनती है चुप रहना, कभी कुछ नहीं कहती. प्रश्न तो साधारण मन के भाव है. जिज्ञासा स्त्री के चरित्र चित्रण की तो बहुत ही भौतिक स्थिति है. वह जो अब मौन हो चुकी है इन विचारों से, प्रश्नों से, उसे उत्तर देने की लालसा भी नहीं, क्योंकि वो जानती है कि उत्तर ऐसा ही है कि सबको निरुत्तर कर देगी. जिन दागों को लेकर स्त्री को प्रश्न किए जाते हैं, राय दागे जाते हैं, इंसान को क्या पता कि ये विभिन्न घाव ही वेदना की पराकाष्ठा तक पहुंचाती है, जहां से वेदना शून्य हो जाती है. ठीक जैसे बहुत ज्यादा प्रकाश में हमें कुछ दिखता ही नहीं, वैसे ही बहुत सारे वेदना मिलकर वेदनाहीन हो जाती है और शून्य ही है जहां से ईश्वर के पास पहुंचा जा सकता है. संख्याएं तो अहंकार है, भार बनाते हैं. मुझे अपने विचारों में रखकर, प्रश्नों में जोड़कर, संदेह कर करके मुझे शून्य और स्वयं को बहुत भारी बना दिया. मैं खुश हूं प्रभु के पास, और प्रभु के पास की अवस्था भी कोई चकाचौंध से भरी शाम नहीं. ये तो रूहानी है, जहां हमने खुद को आंखें मूंद कर ही उनके करीब कर लिया. खुद को शून्य में रखकर जब समाज ने, मित्रों ने कीचड़ पर गिराया, हां तभी तभी तो वो समय था जब मैं कमल हुई, तभी वो समय था जब मैं बांसुरी हुई. स्त्रियोचित बांसुरी कहती है, मैं एक बांस के पेड़ की पुत्री, बहुत ही कम उम्र में मुझे पितृकुल से अलग कर दिया. कहा, यही धर्म है, यही नियम है, ऐसा ही होता आया है। पितृकुल से अलग होते ही मुझे बार बार छीला गया, आघात हुए कई बार, पीड़ाओं को सहना सीख रही थी कि मुझमें छेद कर दिए, पूरे ग्रीष्म भर तपाया, तपती रही, जलती रही, व्यथित होती रही, लेकिन तपन से मेरी परीक्षा पूरी नहीं हुई। बात थी मुझे परिपक्व बनाने की, मजबूत बनाने की। सो वर्षा भर भींगती गई और देखते ही देखते शीत का माह आया। प्रचंड शीत लहरों को सहना था इस बार, और चुप तो मैं पितृकुल से ही थी, इसीलिए अभी भी चुप रही। सोचा इतना शायद काफी होगा, देखने सुनने वाले भी सोचेंगे इतनी पीड़ा। मुझे भी पीड़ा होती थी कि मैं ही क्यों, हर बार हमेशा मैं ही क्यों। लेकिन अभी भी कुछ बाकी था। जब घोर पीड़ा में चली गई तब मुझे उठाकर खोखला कर दिया गया। अब तो कुछ भी नहीं बचा, वो क्या कहा ना मैंने, शून्य। लेकिन जब पूर्णतः खोखली शून्य में पड़ी तब बनी मैं बांसुरी। हाँ, वही जिसे श्री कृष्ण प्रिय मानते हैं, मैं ईश्वरीय हुई। सोच के भी मन में घनघोर वेदना उठ रही है, अब शब्द भी शायद कम से पड़ रहे हैं। वेदना के अश्रु भी तो वर्षा ही है, और जब भादों का मौसम बारिश से विदा ले रहा है तो मन में ये वेदना उठना, ये भाव उठना भी उतना ही स्वाभाविक है।
घनकारे नभ में घिर आए, घनकारे नभ में घिर आए, घनकारे नभ में घिर आए, घनकार नभ में घिर आए। समझाऊं मन कैसे आली, समझाऊं मन कैसे आली, जल भर चंचल फिर लहराए, जल भर चंचल फिर लहराए, घनकारे नभ में घिर आए, घनकारे नभ में घिर आए। रह रह कर कौंध रही बिजली, रह रह कर कौंध रही बिजली, बेसुध गाता कोई कजली, बेसुध गाता कोई कजली, झिर 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 शीतल मंद पवन, झिर 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 शीतल मंड पवन आंचल सिर से सरका जाए, आंचल सिर से सरका जाए। घनकारे नभ में घिर आए, घनकारे नभ में घिर आए, घनकारे नभ में घिर आए, घनकारे नभ में घिर आए। ये बादल दूर देसी है, ये बादल दूर देसी है, जो अपने वे परदेसी है, जो अपने वे परदेसी है। बिरहिन के मौन सजल लोचन, बिरहिन के मौन सजल लोचन, पिया के दर्शन को अकुलाए, पिया के दर्शन को अकुलाए। घनकारे नभ में घिर आए, घनकारे नभ में घिर आए। समझाऊं मन कैसे आली, समझाऊं मन कैसे आली, जल भर चंचल फिर लहराए, जल भर चंचल फिर लहराए। घनकारे नभ में घिर आए, घनकारे नभ में घिर आए।
कभी अगर मन के भावों को सुंदर तरीके से व्यक्त करना मुश्किल लगे तो संगीत की सहायता जरूर लीजिएगा दोस्तों। खैर, बात चली थी सावन के जाने की, भादो मास की। सावन के बाद हमेशा हर साल ही कहीं बाढ़ आती है, कहीं बांधे टूट जाते हैं, कई लोग जो झुग्गियों में रहते हैं उनके घर ढह जाते हैं, और कभी कभी महामारी भी फैलती है। जैसे कि इस बार 2020 में हम महामारी से तो लड़ ही रहे हैं कि कई जगहों में भीषण बाढ़ भी आए हैं। इस बार का भादो सावन की विदाई शायद दूसरे सालों की विदाई से बहुत अलग है। मन घबराता है चारों तरफ देख के, कैसा अंधकार सा प्रतीत होता है, जैसे समझ ही नहीं आता कि फिर से सारी जिंदगी, बल्कि सबकी जिंदगी पटरी पर कब आएगी। बेचैनी का माहौल, दुख की खबरें, बीमारी, बाढ़, भूकंप। लेकिन तभी याद आती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, जो इसी माह में मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म अपने में एक अच्छे समय के आने का संकेत है। याद पड़ता है कृष्ण जन्म की वो रात जब मूसलाधार वर्षा हुई थी और चारों तरफ गहन अंधकार था, यमुना में उफान भर आया था, स्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं लग रही थी। तभी श्री कृष्ण लला आए धरती पर हम सबको बचाने, हम सबका दुख हरने। ठीक वैसे ही जीवन में गहन अंधकार आने वाले प्रकाश का संकेत होती है।
बस जरूरत है हमें ये याद करने की, या यूं कह लूं ये सोचने की कि कहीं हमारी इस भागा दौड़ी की जिंदगी में हम सोचना, विचार करना, प्रेम की चीजों को महत्व देना कहीं भूल तो नहीं गए। बल्कि मैं तो ये कहूंगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं इन चीजों को भूल गए। और जैसा कि हम भूल गए, कहीं हमारे कन्हैया भी इस अंधकार से हमें निकालना भूल तो नहीं गए। हम गरीबों को, किसानों को, नौकरी पेशा को, अबला स्त्रियों को, पशु पक्षियों को, इन सब की रक्षा करने की जिम्मेदारी तो उनकी है, उन्हें याद तो है ना। और आप घबराइए मत कि ये प्रीति क्या तो कह रही है, ईश्वर अगर भूलते तो क्या ये धरती जीवित होती। बात तो आपकी सही है, लेकिन श्री कृष्ण है ना, इनसे सखा तुल्य अधिकार है, जिसे कहते हैं फ्रेंडशिप। वो बहुत अच्छे सखा भी थे, बहुत अच्छे मित्र थे। याद आता है ना आपको श्री कृष्ण और सुदामा का अद्भुत संबंध, मित्रता का संबंध। हम सबका भी रिश्ता उनसे कुछ ऐसा ही अनोखा है। उन्होंने कहा है कि जो मुझ पे अपना अधिकार मानता है, मैं स्वयं पे उसका अधिकार स्वीकार कर लेता हूं। तभी तो जैसे कभी कभी मित्र को चुटकी लेके याद दिलाई जाती है अपनों की, वैसे ही मुझे लगता है हमें भी पूछना पड़ेगा उनसे कि उन्हें याद तो है ना।
अरे कन्हैया रे पल पल की खबर तिहारी पैया परी महादेव के जाके। अरे पैया परी महादेव के जाके, पैया परी महादेव के जाके। अरे टोना भी करके मैं हारी कन्हैया, टोना भी करके मैं हारी रे कन्हैया। याद है कुछ भी हमारे, जरा वो लो रे। अरे याद है कुछ भी के परोने वो इस ब्याहने पर, खाके परोने वो इस ब्याहने पर, अच्छी में रहती कवारी मई कामे में हिलम रहती थी सुख से मई काम में। अरे रहती थी सुख से मई काम में। अरे रहती थी सुख से फिरती थी क्यों मरवारी कन्हैया, फिरती थी क्यों अरे मारी रे कन्हैया। अरे याद है कुछ भी हमारी, कहूँ क्या तेरे भूलने के मैं वारे। अरे याद है कुछ भी हमारी।
दोस्तों, कृष्ण जन्म अपने में सांकेतिक है, बुरे समय के बाद अच्छे समय के आने की। वृंदावन में भी इसकी चर्चा चंदन गोस्वामी जी ने की है।
श्री राधे राधे। आज का जो विषय है वह बड़ा प्यारा है। इसमें मैं कुछ भावों को रखना चाहूंगा। देखिए, सावन के बाद भादो भी आया, जब नदियाँ उफनती हैं, उनमें बाढ़ आती है, कई घर टूटते हैं, बहुत नुकसान होता है। और इसमें मेरे दो भाव हैं जो मैंने अपने गुरुओं से कभी धारण करे हैं। पहला भाव तो यह है कि हम मनुष्य बहुत अपने दुख और दर्द को ही समझने की चेष्टा करते हैं। मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि एक मच्छर की जिंदगी भी कैसी होगी। उसके पास घर तो है नहीं, कुछ दिन का उसका जीवन, उस जीवन के अंदर भी मनुष्यों के द्वारा कीटनाशक का प्रयोग, और उस कीटनाशक के बाद भी उसका खाने की वस्तु, उसके जीने की वस्तु है खून। घर में उसका प्रवेश नहीं है, घर में आया तो मर जाएगा। घर के बाहर भी रहा तो कभी बारिश हो रही है तो बारिश की अगर एक बूंद भी उसके ऊपर पड़ी तो वह खत्म हो जाएगा। गंदगी को साफ करने की चेष्टा हम सब करते हैं, जहाँ भी थोड़ा सा भी मच्छर होते हैं हम सब भगाने की चेष्टा करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि सिर्फ उसे रोज का एक दिन का खाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता होगा, और वह हमारे परिश्रमों से बहुत ज़्यादा है। हाँ, हमने उस परिश्रम में दो वक्त की जो रोटी है, वह दो वक्त की रोटी तो हमको कभी भी कैसे भी प्राप्त हो सकती है, मांग कर भी हो सकती है। बहुत जगह पर भंडारे चलते हैं, कहीं पर किन्हीं ना किन्हीं स्थानों पर, मंदिर आदि स्थानों पर कहीं ना कहीं ऐसे लंगर चलते हैं जहाँ पर भोजन तो प्राप्त हो सकता है, परंतु हमसे ज़्यादा दयनीय जीवन जो है वह बाकी की योनियों का है। जैसे हमारे जीवन के अंदर भी जब यह कभी बाढ़ आती है और हमारे घर आदियों का नुकसान करती है, तो हमारे गुरुवर हमेशा कहते थे कि जिंदगी एक संघर्ष की तरह है और हमारा जीवन एक मकड़ी की तरह होना चाहिए। वह मकड़ी का जाला अगर घर में लग जाता है तो लगने के बाद वह मकड़ी रोती हुई हमारे पास नहीं आती है कि तुमने मेरे घर को उजाड़ दिया है। वह फिर से दिन रात प्रयत्न करके उस अपने दूसरे घर को खड़ा करती है, और दूसरा घर भी हमें अच्छा नहीं लगता तो हम जाते हैं और जाके उसको भी तोड़ देते हैं। फिर तोड़ देते हैं, मकड़ी उसके बाद भी इधर उधर भाग जाती है, फिर आती है और फिर आके फिर अपने घर को बनाती है, अपने जाले को बुनती है, और यह प्रयास उसका जिंदगी भर चलता रहता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा भी जीवन संघर्ष में है। उस संघर्ष में जीवन के अंदर अगर हम अपनी मकड़ी को ही अपने जीवन का गुरु बना लें कि हताश ना हो, डिप्रेस्ड ना हो, और हमेशा संघर्ष करते हुए जीतने का प्रयत्न करें, तो मैं सत्य बताता हूँ, या किसी दिन उस स्थान का वह व्यक्ति ही गिव अप कर देगा और कहेगा यह मकड़ी तो जाती नहीं है, जाले बना लेती है, अब तो मैं नहीं हटाऊंगा। या यह होगा कि वह मकड़ी किसी दूसरे स्थान, ऐसे स्थान पर जाके बनाना शुरू कर देगी जहां पर उसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो यह संघर्षमय जीवन, और उस संघर्षमय जीवन में भी भाद्रपद का महीना जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है, और यह अवतार भी किसी का और दूसरे कारणों से नहीं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय पनार्थाय संभवान्मि युगे युगे। कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह अपने भक्तों के परित्राण के लिए, उनको बचाने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए युग युग में आविर्भूत होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान हम बारंबार करते हैं कि वह भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे जितने भी क्लेश हैं उन सब से बचाएं। एवं सत्यता तो मैं कहूँ, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा भी ऐसी है कि जब ब्रजवासी कंस के उस जब ब्रजवासी कंस के दुष्कृत्यों से बहुत परेशान थे, तब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और अवतार होने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम, अगर कुछ वस्तु हुई है तो सब सर्वप्रथम हुई है कि वहाँ उनकी माँ देवकी और वसुदेव पिता, उनके दोनों के दोनों बेड़ियाँ खुल चुकी थी। वह कारागृह के अंदर थे, जेल के अंदर बंद थे और उनकी बेड़ियाँ खुल गई। तो भगवान श्री कृष्ण भी, जो भी हम सब भक्त हैं, अगर हम माता देवकी और पिता वसुदेव की तरह भगवान श्री कृष्ण को बारंबार याद करें, और क्या पता किसी दिन भगवान श्री कृष्ण का ही आविर्भूत भगवान श्री कृष्ण का ही आविर्भाव हमारे हृदय में होगा। और मैं सत्य बताता हूँ कि श्रीमद् भागवत भी इसी बात को कहती है कि भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले मन के अंदर आए, और मन के अंदर आकर आँखों में वो वसुदेव जी की आए, और वसुदेव की आँखों से देवकी की आँखों में गए, और आँखों से होते हुए देवकी के गर्भ में जाकर अवस्थित हुए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। कभी भी आप श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद को पढ़ेंगे, उसमें साफ लिखा हुआ है। सो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मनमोहन हैं, मन को चुराने वाले हैं, और मन में ही आकर अवतार भी लेते हैं। तो मैं ठाकुर जी से बारंबार यही निवेदन करूँगा कि आप सबके भी हृदयों के अंदर आकर, मन के अंदर आकर भगवान श्री कृष्ण अवतार लें इस भादों के महीने में, कि भगवान श्री कृष्ण का यह अवतार आपको उन सब बेड़ियों से खोले और बचाए, उस कंस रूपी माया रूपी इस विषम परिस्थितियों से एवं संकटों से बचाए, कि भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में उस सुख और आनंद को भर दें कि हम जहाँ जिस प्रकार से भी रहें, हमारा हृदय वह ब्रज बन जाए जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन अपनी नित्य लीला करते रहें। राधे राधे।
अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमें जरूर बताएं। हमारे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पर @HTSmartcast। ऐसे और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन करें www.htsmartcast.com पर। HT Smartcast, सुनो नए नजरिए से।
दिस वॉज एन HT Smartcast ओरिजिनल।
I'm Annie Apple, and I'm here to invite you to come and listen to my new podcast series, Raising a Pro. It's the most intimate sports-related conversations you will hear. Each week, we explore the journeys of some of your favorite NFL players through the eyes of those that know them best. From Joe Burrow, DeAndre Hopkins, Myles Garrett, Ezekiel Elliott, Nick and Joey Bosa, just to name a few. With exclusive insights and information, we leave no stone unturned. Subscribe now to Raising a Pro on your favorite podcast app.